it says in the book of Revelation, when we all get to heaven, we will sing two songs.
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है जब हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो हम लोग दो गीत गाएंगे.
What are those two songs?
वो कौन से दो गीत हैं जो हम लोग गाएंगे?
Two songs.
दो गीत.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
The song of Moses.
मूसा का गीत.
And the song of the Lamb.
और मेमने का गीत.
That's what it says in the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये कहा गया है.
What is the song of Moses?
मूसा का गीत क्या है?
It's the Old Testament song of redemption.
ये पुराने नियम का गीत है छुटकारे के बारे में.
What is the song of the Lamb?
और मेमने का गीत क्या है?
It is the New Testament song of redemption.
वो नए नियम का छुटकारे का गीत है.
Worthy art thou, O Lamb, for thou wast slain. And did purchase unto God men from every kindred, tribe, nation, and tongue.
वो मेमना इस योग्य है, आदर के योग्य है, क्योंकि उसने हर एक जाति, हर एक प्रकार के लोगों से अपने लहू से बचा लिया है.
One day we'll worship and serve God forever together and never grow weary.
और एक दिन हम लोग साथ में मिलकर के परमेश्वर की निरंतर आराधना करेंगे और हम लोग कभी थकेंगे नहीं.
What is the final destination for the true child of God?
परमेश्वर के सच्चे संतान की अंतिम गंतव्य क्या है? परमेश्वर के सच्चे संतान का अंतिम गंतव्य क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्वर्ग में.
Is it heaven?
स्वर्ग में. स्वर्ग है. स्वर्ग जा रहे हैं हम लोग. अंतिम आखिरी गंतव्य कहाँ है हमारा?
The new heavens and the new earth.
नए सृष्टि, नई पृथ्वी और नया आकाश, नई सृष्टि.
We will live again on this earth.
एक दिन हम पुनः इस पृथ्वी पे रहेंगे, जिएंगे इस पृथ्वी पे एक दिन दोबारा.
What's the final destination for the non-Christian?
जो गैर विश्वासी लोग हैं उनके लिए अंतिम गंतव्य कहाँ है?
Is it hell?
नरक है क्या वो? गैर विश्वासी के लिए. इट इज डेफिनेटली नॉट द हाउस ऑफ गॉड. पक्का उसके लिए नहीं है प्रभु का घर. लेकिन क्या है?
The lake of fire.
कुत्ता बिल्ली.
वो लोग कहते मर जाएंगे कुत्ते बिल्ली बनेंगे.
अरे उनकी बात नहीं करें, हम लोग बाइबल की बात कर रहे हैं. हम वो कुत्ता बिल्ली बनेंगे कि नहीं? अविश्वासी लोग का अंतिम गंतव्य क्या है? नरक. नरक है कि आग की झील.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
You are preachers.
आप लोग प्रचारक लोग हैं.
This is very simple.
साधारण बात है बहुत.
You must read your Bible.
आपको अपनी बाइबल को पढ़ना चाहिए.
You must understand this.
आपको ये समझना पड़ेगा.
Redemption is for our soul and our body.
छुटकारा हमारे आत्मा के लिए और हमारे शरीर के लिए.
And when we die, our soul immediately goes into the presence of the Lord.
और जब हम मर जाएंगे तो हमारा प्राण, हमारा आत्मा जो है एकदम से परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता
है.
लेकिन हमारा देह भी, हमारे देह का भी छुटकारा हुआ यीशु मसीह के द्वारा.
And one day in a great mystery when the Lord returns, body and soul shall be joined and forever we shall be together with the Lord.
और ये बड़ी रहस्य की बात है. लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो हमारा जो आत्मा है हमारे देह के साथ उसका मिलन होगा और हमेशा हमेशा तक हम साथ में, हमारी आत्मा और शरीर एक साथ रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में.
For a temporary period of time in an intermediate state our souls will be in heaven with the Lord.
लेकिन फिलहाल के लिए जब विश्वासी लोग मर जाते हैं कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में रहती है फिलहाल के लिए.
But finally and eternally, our body and soul will dwell together with Christ and a new heavens and a new earth.
लेकिन अंततः आखिर में अंतिम समय जब होगा सब कुछ खत्म होने के बाद हमारा आत्मा और देह एक साथ शरीर में प्रभु की उपस्थिति में हम नई सृष्टि और नए संसार में हमेशा हमेशा रहेंगे.
When the lost man dies, his soul immediately is separated from God in a place the Bible calls hell.
और जब एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत एक ऐसी जगह जाती है जिसको बोलते हैं नरक बोलते हैं बाइबल.
And when the Lord returns, the body is soul that will be bound hand and foot, body and soul, and cast into the lake of fire.
और लेकिन जब प्रभु वापस आएंगे तो वे लोग जो लोग नरक में हैं उनके उनका भी आत्मा उनके प्राण उनके शरीर के साथ जोड़ी आएगी और शरीर और आत्मा उनका दोनों हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए. इसलिए आपको निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहना चाहिए प्रार्थना पढ़ते रहना चाहिए जानकारी के लिए ताकि आप लोग बता सकें सफाई के साथ कि क्या होने वाला है आखिर में.
That's why it is important to properly interpret the word of God.
इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से हम व्याख्या करें.
I was looking again in the book of Acts.
हम लोग प्रेरितों के काम में फिर से देख रहे थे.
We are walking through several examples to just help us how to apply some basic biblical principles.
प्रेरितों काम को पढ़ते हुए हम देख रहे थे कैसे हम लोग कुछ आधारभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे.
When you study the word of God,
जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं
you got to be willing to work hard.
तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा.
You got to ask questions to the text.
आपको उस खंड से प्रश्न पूछना पड़ेगा.
You're trying to determine the meaning of what it says.
आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस खंड का अर्थ क्या है मतलब क्या है.
And the timeless principle that is there.
और वहाँ पे ऐसा क्या सिद्धांत है जो हमेशा हमेशा तक हम पे लागू होता है.
You can clearly preach it to others. So they can understand.
और फिर कैसे आप उसको सफाई के साथ दूसरों तक प्रचार कर सकते हैं ताकि वे भी समझें क्या कह रहे हैं.
Acts chapter
2. दूसरा अध्याय पत्रस जो है पिंतेकुस्त के दिन में प्रचार कर रहा है.
His final conclusion,
उसका अंतिम निर्णय ये निकला.
Verse 36.
उसका 36 पद में
All messages should be from the word of God.
सारा जो भी संदेश होते हैं परमेश्वर वचन पर आधारित होना चाहिए.
What is true preaching?
सही प्रचार या सच्चा प्रचार क्या है. तीन चीज सच्चा संदेश ही होता है. पहली बात
you read the word of God.
सच्चे संदेश के सच्चे प्रचार में आप सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. सबसे पहले परमेश्वर वचन पढ़ेंगे. दूसरी बात
यू एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड.
पहले आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को फिर उसके बाद आप उसको समझाएंगे वहां पे क्या लिखा है व्याख्या करेंगे. और उसके बाद तीसरी बात सच्चे प्रचार में तीसरी चीज आप लागू करेंगे पढ़ेंगे व्याख्या करेंगे फिर लागू करेंगे. तीन चीजें.
Here in Acts chapter 2 you have a first primitive pattern of a real message.
और प्रेरितों उसके दूसरे अध्याय में यहाँ पे सर्वप्रथम बार हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया किस तरह से संदेशों का प्रचार किया जाना चाहिए.
Peter quotes the word of God.
पत्रस ने पुराने नियम में परमेश्वर के वचन का उद्धरण किया बताया.
Explains the word of God.
ना सिर्फ उसने उद्धरण किया लेकिन उसने उसको बाद में समझाया व्याख्या की.
Conclude by applying the word of God.
और फिर बाद में वो खत्म करता है परमेश्वर के वचन को लागू करते हुए लोगों के जीवनों पर. उसने कुछ भजनों को पढ़ा.
He said, Jesus is the fulfillment of these psalms.
और ये पत्रस ने कहा कि यीशु मसीह इन भजनों की परिपूर्णता है उसमें होकर के पूरे हो रहे हैं भजन.
Resurrection of Christ.
और फिर यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ये भजन बात कर रहे हैं.
Verse 36.
और 36वें पद में
there is the conclusion.
और फिर यहाँ पे 36 पद में ये इसका निष्कर्ष निकलता है इसलिए
God has made him Lord and Christ whom you crucified.
और 36 पद निष्कर्ष निकालते हुए पौलुस इसराइल का संपूर्ण घराने से जानने की परमेश्वर ने से प्रभु मसीह दोनों को ठहराया है.
You crucified your own Messiah.
इसी मसीह को जो कि तुम्हारा मसाया मसीहा है उसको तुमने क्रूस चढ़ा दी यीशु को.
And verse 37.
और 37 पद में
heard this they were pierced in their heart and said brethren what must we do.
और 37 पद में जब उन्होंने सुना इस बात को तो उनके हृदय छेद गए और उन्होंने उनसे कहा भाई हमको क्या करना चाहिए. फिर
said, repent and be baptized in the name of Christ for the forgiveness of sin you receive the Holy Spirit.
और पत्रस ने कहा मन फिराओ यीशु मसीह के नाम में से प्रत्येक जन बपतिस्मा ले और तुम्हारे पापों को क्षमा हो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे. और ध्यान सुनिए देखिए 39वें पद को
he says, for this promise is for you and your children and for all that are far off as many as the Lord will call to himself.
क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है तुम्हारे लिए तुम्हारे संतान के लिए और उन सब के लिए जो दूर दूर हैं.
And there are many today in America and sometimes in India and other places that say,
और कई लोग हैं कई बार इंडिया में अमेरिका में जब वो लोग ये पढ़ते हैं तो कहते हैं इस पद को देख करके
that we not only baptize believers, but we baptize their children.
तो वो कहते हैं कि जब ये पद 39 पद पढ़ते हैं तो कहते हैं हम खाली विश्वासियों को बपतिस्मा नहीं देंगे लेकिन बच्चों को भी बपतिस्मा देंगे
When a baby is born, he should be baptized.
और इसलिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बपतिस्मा होना चाहिए
And they use this verse.
और वो लोग इस पद का इस्तेमाल करते हैं
Promises for you. And your children.
प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए प्रतिज्ञा
so if you believe,
और अगर तुम विश्वास करते हो
baptize your children.
तो तुमको अपने बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए
Now listen carefully.
अब ध्यान से इस बात को
We would properly interpret this verse,
अगर हम लोग सही तरीके से इस स्थल का इस खंड का अनुवाद करेंगे व्याख्या करेंगे
two important words and two important things that we must define in this verse.
तो इन पद में दो महत्वपूर्ण बातें हैं दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको हमको सही तरीके से परिभाषित करना है समझाना पड़ेगा लोगों को इस पद को ध्यान से देखिए
verse,
जब आप इस पद को देखते हैं तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं इस पद में और कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं इस पद में तो कौन से दो महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ पे
नंबर वन
पहली बात
लुक एट इट
ध्यान से देखिए
What's the important word?
महत्वपूर्ण शब्द कौन से वर्स 38 39 39वें पद में कौन से महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे प्रतिज्ञा
Promise.
प्रतिज्ञा
So we need to ask this question.
तो हमें प्रश्न पूछना ही आला
What is the promise?
प्रतिज्ञा क्या है यहाँ पे किस चीज की प्रतिज्ञा की जा रही है
And how is it received?
और दूसरी बात तो पहली बात प्रतिज्ञा क्या है और दूसरी यदि प्रतिज्ञा मिलेगी कैसे प्राप्त कैसे होगी हम ग्रहण कैसे करेंगे प्रतिज्ञा को
सेकंड वर्ड
दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे कॉल
कॉलिंग
जिनको बुलाया गया है
We need to ask this question.
हमको प्रश्न पूछना यह
What is the calling?
बुलाहट क्या है
And how is it applied?
और ये बुलाहट लागू कैसे होती है लोगों के ऊपर
And if you can answer those two questions, you can understand the meaning of the verse.
और अगर आप इन दो प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं तो आप इन पदों का अर्थ समझ सकते हैं
So remember two basic principles.
तो ध्यान रखिए दो आधारभूत सिद्धांत
Number one, study the immediate context.
पहली बात जब भी कोई पद पढ़ें तो उसके आसपास का नजदीके का हाल का संदर्भ का जरूर अध्ययन करें
And number two, allow scripture to interpret scripture.
और दूसरी बात इस बात की अनुमति दें कि वचन ही वचन को हमारे सामने व्याख्या करे समझाए
So look in the previous context.
तो वहाँ पे उसे पहले के संदर्भ को देखिए ध्यान से
Verses 29 to 36.
29 पद से लेके 36 पद में
And if you read that passage, what is the promise?
और 29 पद से 36 पद को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या है
Look at it.
ध्यान से देखिए वहाँ पे 29 पद से 36 पद तक
What's the promise?
यहाँ पे क्या प्रतिज्ञा दी गई है
Look at verse 33.
33 पद को ध्यान से देखिए
What's the promise?
क्या है प्रतिज्ञा यहाँ पे
The promise of the Holy Spirit.
प्रतिज्ञा यहाँ पे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे
looked in the immediate preceding context,
आपने उसके पास के नजदीकी हाल के ही संदर्भ को देखा आगे पीछे क्या चल रहा है और फिर आप ये प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं जब पत्रस प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल करे तो पत्रस कैसे उसको तुरंत समझाता है पहले ही
He says the promise is the Holy Spirit.
तो फिर वो कहता है जिस प्रतिज्ञा की बात मैं कर रहा हूँ वो प्रतिज्ञा कुछ और नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा है
And then you seek to let scripture interpret scripture.
और फिर आप ये प्रयास करते हैं कि खंड ही खंड को अनुवाद करेगा परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर के वचन का अनुवाद करेगा व्याख्या करेगा
This passage in Galatians 3.
और गलतियों के तीसरे अध्याय में याद हमने एक खंड को बताया था
Look at it.
अरे ये अब हम उसको भी देख लेते हैं गलती से तीसरे अध्याय को.
Means you must be familiar with the scripture and you must consistently and continually read the scripture.
इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर के वचन से वाकिफ होना चाहिए, आपको निरंतर लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए.
So we've answered one part of the question.
तो हमने वचन एक खंड को, एक हिस्से को हमने अभी उत्तर दिया यहाँ पे.
What is the promise?
प्रतिज्ञा क्या है?
Second part of the question.
दूसरा प्रश्न ये है,
हाउ इज इट रिसीव.
तो ये जो प्रतिज्ञा जो की गई थी, प्रतिज्ञा जो की पवित्र आत्मा है, उसको हम ग्रहण कैसे करते हैं, पाएंगे कैसे?
In the book of Galatians,
गलतियों के तीसरे अध्याय में,
verses 10 to 14,
10 पद से लेकर 14 पद में,
how does it say we receive the promise of the Spirit?
और वहां पे क्या लिखा गया है कि कैसे हम प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा को प्राप्त करते हैं, हमें कैसे मिलती है ये प्रतिज्ञा? हाँ जी,
verse 14,
14 पद,
the blessing of Abraham come to the Gentile that we would receive the promise of the Spirit by faith.
ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी.
Can a little baby believe?
क्या एक छोटा बच्चा, जो गोद में छोटा बच्चा है, वो विश्वास कर सकता है?
Is the promise of the Spirit automatically given because of physical birth into a Christian family?
क्या पवित्र आत्मा का वरदान जो प्रतिज्ञा किया गया है स्वतः अपने आप स्वचलित मुद्रा में होकर के किसी बच्चे को दे दी जाती है क्योंकि वो शारीरिक तौर से किसी मसीह परिवार में पैदा हुआ है?
The promise of the Spirit is not those that have been physically born into a Christian household.
प्रतिज्ञा आत्मा की प्रतिज्ञा उनके लिए नहीं है, अपने आप स्वतः स्वचलित मुद्रा में होकर के वे लोग जो शारीरिक तौर से किसी घर में पैदा हुए हैं.
The promise of the Spirit is given to those that have been spiritually born into God's household.
लेकिन प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की उनके लिए है जो लोग आत्मा तौर से परमेश्वर के घर में जन्म लिए हैं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? फर्क समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? भिन्न तो समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं?
So you look at the context.
इसलिए आप संदर्भ को देखते हैं.
And if you're sensitive to the principle of scripture interpreting scripture.
और अगर आप लोग इस सिद्धांत के प्रति संवेदनशील हैं, जागरूक हैं कि पवित्र शास्त्र ही पवित्र शास्त्र का व्याख्या करता है.
Once you define what the promise is,
तो जब एक बार आपने परिभाषित कर दिया कि प्रतिज्ञा क्या है आखिरकार,
promise of the Spirit,
वो तो प्रतिज्ञा जब कह रहा है तो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है और किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहा है.
The rest of the scripture and ask, is there anywhere else that Peter or Paul mentions the promise of the Spirit?
और फिर हम कहते हैं कि क्या बाइबल में कहीं और उसी बारे में बात करते हुए पत्रस या पौलुस या कोई और लेखक हमें बताता है कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कैसे पाई जाती, किस उसके बारे में बात करता ही नहीं करता है.
So we have a basic biblical truth.
तो हमारे पास एक आधारभूत बाइबल पर आधारित सत्य है.
Let me say it again.
एक बार फिर से कहता हूं मैं आपसे.
The promise of the Spirit is not by physical birth into a Christian household.
पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा शारीरिक तौर से मसीह घराने में जन्म लेने के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है.
It is by spiritual birth into God's household.
लेकिन प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हम प्राप्त करते हैं जब हम आत्मिक तौर से परमेश्वर के घराने में जन्म लेते हैं, तब हमको प्राप्त होता है वो प्रतिज्ञा.
And it's not automatically applied to Christians' children.
और ये मसीही लोगों के बच्चों को अपने आप स्वचलित स्वतः नहीं मिल जाता है.
It is received by an intelligent and believing faith.
और ये प्राप्त किया जाता है विश्वास करने वाले और समझ के साथ विश्वास के द्वारा.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
Two principles there.
दो सिद्धांत हैं यहाँ पे.
Look at the immediate context.
तुरंत के वहाँ के संदर्भ को देखिए, आगे पीछे कैसे चल रहा है.
Let some other scripture help you interpret and define the meaning.
और दूसरे दूसरे जो खंड है वो आपकी मदद करने दे समझाने में कि वो खंड क्या कह रहा है.
But the first principle,
लेकिन सबसे पहला सिद्धांत,
look at the verse,
उस पद को देखिए और ये प्रश्न पूछिए,
what are the important words or ideas here?
और जब भी कोई पद पढ़े तो आप कहिए इसमें मुख्य शब्द या मुख्य विचार क्या है, क्या शिक्षाएं दी जा रही हैं?
What does it mean?
कहने का क्या मतलब, क्या कह रहा, तात्पर्य क्या है इनका?
Back in the book of Acts,
और फिर तो काम की पुस्तक में पीछे की ओर,
chapter 2 again,
दो फिर से आइए दूसरे अध्याय में मेरे साथ,
listen carefully,
और ध्यान सुनिए मेरी बात को,
if you really do this with diligence and discipline, it'll give you a headache.
और अगर आप मेहनत के साथ और प्रयत्न के साथ ये काम करेंगे तो आपको सरदर्द जरूर होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो.
And if you're a sloppy Bible student, we will not accurately handle the word of God.
लेकिन अगर आप एक लापरवाह बाइबल के अध्ययन करने वाले हैं, पाठक हैं, तो आप ठीक ठाक तरीके से परमेश्वर के वचन का उपयोग नहीं करेंगे.
That's why it's important for you to consistently and continually read the word of God.
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नियमित तौर से लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उसको पढ़ें.
Your life is saturated in the word of God.
आपका जीवन परमेश्वर के वचन में सराबोर होना चाहिए, भरा होना चाहिए.
So when someone says a word,
जब कोई कोई शब्द कहता है,
what is justification?
धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है?
In your mind,
आपके मस्तिष्क में एकदम से खड़ा खटे के बाद एक.
Sanctification,
पवित्रीकरण, नया बनाया जाना, पहले से ठहरा जाना, पूर्व निर्धारित करना, बुलाहट, पश्चाताप, विश्वास.
Why? Not because you tried to memorize a few verses.
इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ पदों को याद कर लिया, रट लिया है, मुखाग्र कर लिया है.
Living in the word of God.
लेकिन आप परमेश्वर के वचन में जी रहे हैं.
And after 5 years,
और 5 साल के बाद,
10 years,
10 साल के बाद,
15 years,
15 साल के बाद,
20 years,
20 साल के बाद,
your mind is increasing with the scripture as to both theology and verses.
और आपका जो मस्तिष्क है परमेश्वर के वचन के साथ और धर्म विज्ञान के साथ बढ़ता चला रहा, भरता चला जा रहा है समय के साथ साथ.
And you know what happens when you're about 65 or 70?
और आपको मालूम है जब आप 65 साल के या 70 साल के होते तो क्या होता है, क्या आपको मालूम है?
Those verses and thoughts start flying away.
धीरे धीरे वो जो पद हैं और जो शब्द हैं आपके दिमाग से उड़ने लगते हैं.
Now is the time.
इसलिए यही समय है, अभी समय है.
Now is the time.
अभी समय है, ये समय है आपके लिए.
You young man, your brain is like a sponge.
और भाई, जो जवान भाई लोग, आप लोग हैं, आपका आपका मस्तिष्क इस समय एक सोखता स्पंज के समान है.
My brain is like a brick wall.
लेकिन मेरा तो दिमाग इस समय एक पत्थर की दीवार के समान हो गया है.
I can think of a verse and 5 minutes later it's gone.
मैं किसी पद के बारे में सोच सकता हूँ और फिर 5 मिनट बाद मैं भूल जाता हूँ उसको.
Now is the time.
लेकिन आप लोग के लिए समय अभी है.
Live in the scripture.
इस वचन में जीवन व्यतीत करिए आप.
So that scripture will interpret scripture.
तो जब आप वचन में जीवन व्यतीत करेंगे तो वचन ही वचन का अनुवाद करेगा, व्याख्या करेगा.
Acts chapter 2.
प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय,
39,
उसका 39 पद.
What's the second important word?
वहां पे दूसरा मुख्य शब्द क्या है?
Call.
बुलाया गया.
So we need to ask this question.
तो हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए.
What is the call?
बुलाया क्या है?
And how is it applied?
और ये बुलाहट हम पे लागू कैसे की जाती है?
So when we say calling,
जब हम कहते हैं बुलाहट की बात करते हैं,
give me 3 verses that talk about God's calling.
आप मुझे 3 पद दीजिए जो परमेश्वर की बुलाहट के बारे में बात करते हैं. पद बताइए. Romans 8:32.
Romans 8:29 and following. Those whom he foreknew, he also predestined.
जिसके बारे में उनको उसको पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से भी ठहराया.
Those whom he predestined, he called.
और जिसे उसे पहले से ठहराया उसने उनको बुलाया.
Those whom he called, he justified.
और जिसको उसने बुलाया उसने उनको धर्मी भी ठहराया.
Those whom he justified, he glorified.
और जिसने उनको धर्मी ठहराया उनको महिमान्वित किया.
Now, if you've been studying the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं,
we talk about calling,
जब हम बुलाहट के बारे में बात करते हैं,
remember that the same word has different meanings in different context.
तो आप समझ जाएंगे कि इसी शब्द बुलाए जाने का मतलब अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है.
And you will be reminded that there's a general call in the preaching of the gospel through the mouth of the preacher.
और फिर आप समझ जाएंगे प्रचारक के मुख से एक सामान्य बुलाहट भी होती है और वो सामान्य बुलाहट है.
There's a specific call by the Spirit of God into the heart of man.
लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक विशेष या एक विशिष्ट बुलाहट होती है लोगों के हृदयों पर.
One call is outward.
लेकिन एक बुलाहट जो प्रचारक की बुलाहट है वो तो बाहरी है.
The other one is inward.
लेकिन जो दूसरी पवित्र आत्मा की जो बुलाहट है वो भीतरी है.
One call can be rejected by men.
और जो बाहरी बुलाहट प्रचारक द्वारा वो तो लोगों के द्वारा तिरस्कार की जा सकती है.
The other call works effectively and powerfully within men.
लेकिन जो दूसरी आत्मा के द्वारा भीतरी बुलाहट है वो मनुष्य के हृदय के भीतर प्रभावशाली तरीके से कार्य करती है.
One call is by the voice of the preacher.
और एक बुलाहट जो है प्रचारक के मुख से आवाज से आता है.
The other call is by the spirit and voice of God.
लेकिन दूसरी बुलाहट पवित्र आत्मा के आवाज और उसके उसके शब्दों के द्वारा होता है.
The preacher says, come.
और जब प्रचारक कहता है आओ,
men don't come.
तो लोग नहीं आते हैं.
God says, come.
लेकिन जब प्रभु कहता है आओ,
must come.
तो वो लोग आएंगे ही आएंगे.
Powerful call.
क्योंकि वो बड़ा ही शक्तिशाली बुलाहट है. वो भीतरी बुलाहट है.
It's a sovereign call.
और वो सार्वभौमिक बुलाहट है.
Effectual call.
और वो प्रभावशाली बुलाहट है.
And you need to know verses that speak to that reality.
और आपको इन पदों को मालूम होना चाहिए जो इस वास्तविकता के बारे में बात करते हैं.
And again and again in Paul's epistles, he talks about this effectual calling.
और बार बार पौलुस अपनी पत्रियों में बात करता है प्रभावशाली बुलाहट के बारे में.
So when it says as many as our God will call to himself,
और तो इसमें लिखा है जिन लोगों को प्रभु ने अपने पास निकट बुलाया है.
God's the one that calls.
परमेश्वर है जो बुलाता है.
The call is by the Spirit of God.
वो बुलाहट परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होता है.
He calls men to himself.
और वो अपने आप अपने पास लोगों को बुलाता है.
Are you explaining this verse?
और जब आप इस पद को लोगों को समझाते हैं तब आप लोगों को ये बताते हैं.
We want to understand this passage.
अगर हम इस पद को खंड को समझना चाहते हैं.
We want to apply it properly.
अगर हम इसको सही तरीके से लागू करना चाहते हैं.
You need to look and see there are two important things here.
तो आपको देखना है इस खंड में कि दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे और हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है.
What is the promise?
प्रतिज्ञा क्या है?
How is it received?
और इस प्रतिज्ञा को हम कैसे प्राप्त करते हैं? और बुलाहट क्या है?
How is it applied?
और यहाँ पे लागू कैसे की जाती है?
We will unpack and explain those things to people.
और फिर आप इन दोनों बातों को खोल करके लोगों के सामने रख देते हैं.
And then put it back together and apply it to them.
और फिर बाद में दोबारा एकत्रित करके लोगों के जीवन में उसको लागू भी करते हैं उस तथ्य को. और यही इसका मतलब है किसी एक पद को लेकर के लोगों के जीवन में प्रचार करना.
You don't study the immediate context.
लेकिन अगर आप उसके तुरंत के आसपास के संदर्भ का अध्ययन नहीं करेंगे.
You don't allow principle, scripture to interpret scripture.
और लेकिन अगर आप ये अनुमति नहीं देंगे कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद करे व्याख्या करे.
Well, this teaches that we should also baptize our children.
तो फिर आप लोग कहेंगे ये पद तो हमको ये भी कहता है कि हमें बच्चों का बपतिस्मा देना चाहिए.
So they baptize their children when they're babies.
और इसलिए कई लोग अपने बच्चों को जब छोटे छोटे होते हैं तो उनका बपतिस्मा दे देते हैं उठा करके.
And when they grow up,
और फिर जब वो बड़े होते हैं
they are members of the church.
वो लोग कलीसिया के सदस्य भी बन जाते हैं.
And they know the confession.
और उनको मालूम है कुछ अलग अलग विश्वास वचन.
And they say the covenant.
और फिर वो लोग जो कलीसिया के जो वाचा है उसको बोलते भी हैं. और बाहर से तो दिखने बड़े नैतिक हैं वो लोग.
They believe all things in their head.
और अपने मस्तिष्क में जो सारी बातों पर विश्वास करते हैं. और जब लोग मर जाते हैं फिर वो लोग नरक जाते हैं.
Why?
क्यों?
Because someone did not properly apply, interpret, and apply the word of God.
क्योंकि किसी ने परमेश्वर के वचन को सही तरीके से व्याख्या नहीं की और उसको लागू नहीं किया.
Where did it begin?
कहां शुरुआत हुई इस चीज की?
Bad hermeneutics, bad interpretation.
खराब व्याख्या शास्त्र, खराब व्याख्या अनुवाद करना, मतलब अर्थ निकालना.
Where does it end?
और अंत कहां होता है इसका?
In hell.
नरक में.
That's why it's important to properly interpret the word of God.
इसीलिए आप लोग को बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उसकी व्याख्या की जाए.
You understand what we're doing?
आप समझ रहे हैं कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे?
Very simple.
बहुत साधारण बात है, सरल बात है.
Two of the most basic principles of Bible interpretation.
वचन के व्याख्या शास्त्र के दो बड़े ही बुनियादी सिद्धांत.
Explain and define any particular verse in its immediate context. text.
किसी भी पद को उसके तुरंत के संदर्भ में समझाइए और परिभाषित करिए.
And then bring other scripture to bear to help you define and interpret it.
तो पहले उसके खुद के स्वयं के हाल के ही नजदीकी संदर्भ में उसको समझने की कोशिश करिए, परिभाषित करिए, और फिर साथ में दूसरे पदों को लेकर के आइए जो हमको समझाने का प्रयास करिए, इस पद में क्या हो रहा है, इस खंड में क्या हो रहा है.
But if you don't want to work,
लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अनुशासित नहीं होना चाहते हैं और आप कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, और जाइए आप बाहर जाकर के जूते बेचिए.
Don't stand in this place.
लेकिन आप खड़े मत होइए प्रचार करने के लिए.
We've been talking about this verse for 10 minutes.
हम 10 मिनट से इस पद के बारे में बात कर रहे हैं.
And I've gotten a headache.
और मेरे सर में दर्द होने लगा.
Just explaining these simple things to you.
केवल इन साधारण चीजों को आपको समझाने में मेरा सर दर्द होने लगा.
If you don't want to get a headache,
लेकिन अगर आप सर दर्द नहीं लेना चाहते हैं,
don't be a preacher.
तो फिर आप संदेश का प्रचार मत करिए.
Don't just look at the surface of the water.
केवल पानी की सतह पर ही मत देखते रहिए आप.
Put on the glasses of proper biblical interpretation.
लेकिन सही ऐनक पहनिए बाइबल के व्याख्या शास्त्र की.
Get under the surface of the water.
और पानी की सतह से नीचे अंदर घुसिए और नीचे घुस करके देखिए क्या क्या है वहां पर. बहुत सारे प्रचारक लोग वो इस तरह के होते हैं.
You got to put on the glasses of proper biblical interpretation principles.
लेकिन वचन की सही व्याख्या करने के सिद्धांतों का चश्मा आपको पहनना ही पड़ेगा.
You don't want to work hard.
लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना मानते हैं,
don't open this book and teach others.
तो फिर इस पुस्तक को खोल के दूसरों को मत सिखाइएगा फिर आप.
Because you can leave them to hell.
क्योंकि आप उनको हो सकता है नरक की ओर लेकर के चले जाएंगे.
Any questions?
कोई प्रश्न है आपके पास?
You understand what we did here?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
This is a little more complicated interpretation than what we are saying here, but this is the basics.
और यद्यपि हम इससे और भी अधिक जटिल बातें हैं, लेकिन हम कुछ आधारभूत बातों को कर रहे हैं यहाँ पे. कोई प्रश्न दिक्कत समस्या कठिनाई विचार टिप्पणी प्रश्न कठिनाई दिक्कत समस्या विचार प्रश्न कोई प्रश्न. You want them to ask exactly the same passage, or they can ask about the one that you've talked about before?
Yeah, what was the one before?
कौन सा प्रश्न आपके पास? कोई प्रश्न है? Oh, something from Acts. बुलाहट के बारे में प्रश्न है आपके पास? प्रश्न है तो बोल भी नहीं रहे.
कैसे पता लगे कि इनके पास परमिशन से बाहर है?
जो अनपढ़ है वो प्रचार कर रहे हैं. His question, actually it's very relevant. Badiya question.
It's what?
There are a lot of illiterate people.
Ah.
And they feel that they are called. And they preach. And they even have churches. But they are illiterate.
I mean, they can't even read Hindi.
Oh, no, nothing. Zero. They can't read. And they are pastors. They are running churches. There are tons of them. There are like hordes of them.
First Timothy.
पहला तिमोथी चौथा अध्याय उसका 13 पद.
Preaching involves three things.
पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय उसका 13 पद.
First Timothy 4.
पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय
verse 13.
उसमें 13 पद.
What are those three things?
उन 13 पद में तीन चीजें क्या हैं?
Number one.
पहली बात.
Number two.
दूसरी बात. नहीं पहले करना क्या करना है? पढ़ना है. फिर दूसरी बात. नहीं पढ़ने के बाद क्या करना है? सुनना है. पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? तो पहले सबसे खुद क्या करना पड़ेगा?
पढ़ना.
तो पढ़ने के बाद क्या करना है? अच्छा उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? धन्यवाद. ध्यान से सुनिए. एक प्रचार करने की साधारण परिभाषा क्या है? तीन चीजें. आपने देखा था प्रेरित काम के दूसरे अध्याय में भी आप देखा था.
Reads the word of God.
कोई आता है पढ़ता है परमेश्वर के वचन को.
He teaches and explains the word of God.
फिर परमेश्वर के वचन को सिखाता है समझाता है.
Then he applies the word of God.
और फिर क्या वो लागू करता है परमेश्वर वचन को.
And he exhorts the people of God.
और फिर परमेश्वर के लोगों को वो उत्साहित करता है.
That's a simple definition of preaching.
और यही है प्रचार की साधारण परिभाषा.
If a man is called to preach,
अगर एक किसी व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया प्रचार करने के लिए,
he either will have some ability to read the word of God.
तो उसके पास कुछ तो क्षमता होगी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की.
Or if he truly called to preach,
और अगर वो उसको सच में प्रभु ने बुलाया पढ़ने के लिए प्रचार करने के लिए,
man stand right by him,
तो क्या करेगा, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को बगल में खड़ा करेगा.
That man will read the word of God,
और वो व्यक्ति वचन को पढ़ेगा.
And the other man will explain and expound the word of God.
और फिर दूसरा व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता वो समझाएगा बताएगा उस पद में खंड में क्या लिखा है.
That is very rare.
लेकिन ये बहुत कम होता है.
Or he has a tape and he plays the passage on a tape.
और या फिर वो एक टेप ले कैसेट लेगा और उसको बजाएगा सीडी बजाएगा.
To explain it.
और फिर वो प्रयास करेगा उसको समझाने के लिए वहां पे क्या बोला जा रहा है.
That is very rare.
और लेकिन ये भी बहुत ही कम पाया जाता है ऐसी बात.
In most cases,
लेकिन अधिकांशता
God calls a man to preach,
जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता प्रचार करने के लिए,
some basic ability to do simple reading in his own language.
तो फिर परमेश्वर जब भी किसी को बुलाता है तो अधिकांशता परमेश्वर उस व्यक्ति को आधारभूत क्षमता देता है अपने भाषा में थोड़ा सा पढ़ने की सीखने की.
If he cannot do that, he may get up and talk for an hour about his own opinions or his own ideas or his own testimony or his own stories and not really be able to explain the word of God.
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है तो हो सकता है कि एक घंटे वो जरूर प्रचार करेगा लेकिन वो एक घंटे में अपने विचार बताएगा अपनी गवाही बताएगा और जो कुछ उसको समझ में आएगा कहानियां बताएगा लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचन को कभी समझाएगा ही नहीं.
I've been almost 20 years in China.
तो मैं लगभग 20 साल से चीन देश में सेवा कर रहा हूँ.
I've spoken to hundreds and hundreds and hundreds of preachers all over China.
और चीन देश में संपूर्ण जगह पर मैंने सैकड़ों 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 प्रचारकों से बात किया है.
Probably 50-75% of them are not truly called, gifted, and equipped to be true preachers.
और मेरे विचार से जो सैकड़ों और सैकड़ों प्रचारकों से मैंने बात किया उनमें से 50-75% प्रचारक लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने शायद बुलाया नहीं है और उनके पास योग्यता और क्षमता नहीं है वरदान नहीं है प्रचार करने का.
They are sincere.
वो लोग बड़े ही गंभीर लोग हैं सत्यनिष्ठा है उनके अंदर.
They're zealous.
और वो लोग जोश से भी भरे हुए हैं.
They love the Lord.
वे प्रभु से प्रेम भी करते हैं.
They love the word of God.
वे परमेश्वर के वचन से भी प्रेम करते हैं.
They stand up to preach.
लेकिन जब वो लोग खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए
no order.
कोई क्रम नहीं होता है
explanation.
उनको समझाना नहीं आता है
no clarity.
कोई स्पष्टता नहीं होती है
no development.
और कोई प्रगति नहीं होती है
no application.
कोई लागूकरण नहीं होता है
total confusion.
और संपूर्ण गड़बड़ी होती है.
Not called to preach.
ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने के लिए बुलाया नहीं गया.
If God has called you to preach,
लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रचार करने के लिए,
not be educated.
हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं होंगे.
May be able to read just on a first grade level.
हो सकता है कि आप खाली पहली कक्षा के स्तर की पढ़ाई करना जानते हैं सिर्फ.
But true preaching.
लेकिन सच्चा प्रचार.
Paul says, preach the word.
पौलुस कहता है वचन का प्रचार करो.
Paul said, we preach not ourselves, but Christ Jesus as Lord.
पौलुस कहता है कि हम स्वयं को प्रचार नहीं करते लेकिन यीशु मसीह का प्रचार करते हैं प्रभु है जो.
And the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword.
और परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है और किसी दोधारी तलवार से ज्यादा भी तेज धार है.
And it's given by inspiration of God and it's profitable for the preacher.
और परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से दिया गया है और प्रचारक के लिए ही उपयोगी है फायदेमंद है लाभकारी है.
In the book of Ezra and Nehemiah,
और एज्रा और नहेमिया की पुस्तक में,
you'll remember when they found and they begin to restore and they begin to teach again the law of God.
आपको याद है जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पाया परमेश्वर की व्यवस्था को और उसको पुनः स्थापित करने लगे और उसका अध्ययन करने लगे वो लोग वहां पर.
They built the pulpit, the wooden place.
तो उन्होंने क्या किया एक जगह बनाई एक मेज बनाई प्रचार करने के लिए लकड़ी की.
And the priest would read the law of God.
और जो याजक था वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता था.
And it says the others would interpret and explain it.
और जब याजक पढ़ता था तो उसके उसके बाद कहा जाता है वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति होता था जो वचन को अनुवाद करता था, व्याख्या करता था, समझाता था.
Because the old law was written in old Hebrew.
क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी वो पुराने इब्राहिमी भाषा में लिखी गई थी.
And most of the people after 70 years in captivity had long since forgot the Hebrew. They only knew Aramaic.
और क्या हुआ क्या था, जब बंदवाई में इजरायली लोग चले गए थे तो वो लोग, बहुत लोग इब्राहिमी भाषा भूल गए थे, और कुछ ही लोग थे जो 70 साल के बाद उनको मालूम था. अधिकांश लोग खाली आरामी भाषा जानते थे, इब्राहिमी भूल चुके थे.
What did the priest do?
तो फिर याजकों ने क्या किया फिर?
One of them read it in Hebrew.
एक व्यक्ति तो इब्राहिमी भाषा में पढ़ता था.
The other one interpreted and translated so they could get the sense of what it meant.
और फिर दूसरा व्यक्ति इब्राहिमी भाषा से आरामी भाषा में अनुवाद करके बोलता था ताकि लोग समझ सके क्या हो रहा है.
They translated it into Aramaic.
और वो लोग आरामी भाषा में उसका अनुवाद करते थे. और फिर उसके बाद ये लोग उसको समझाते थे और लोगों को सिखाते थे.
If you're a preacher,
अगर आप प्रचारक हैं,
99.9% of the time,
99.99% समय
you need to be able to read the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना आना चाहिए.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
You're Indian.
आप भारतीय हैं.
It's nice to learn a little English.
और अच्छी बात है कि थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लें.
Well, that's not necessary.
लेकिन वो जरूरी नहीं है.
You need to know your Bible.
लेकिन आपको अपनी भाषा में हिंदी में बाइबल आनी चाहिए अच्छी तरह से.
You need to learn how to speak clear, simple Hindi to people.
और आपको अच्छी स्पष्ट साधारण सरल हिंदी बोलना आना चाहिए.
God called you, you can do that.
अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आप ऐसा कर सकते हैं.
You don't necessarily have to know Greek and Hebrew.
जरूरी नहीं कि आपको यूनानी भाषा भी आए और इब्राहिमी भाषा भी आए, जरूरी नहीं है.
If you have the chance to study that, you should study it.
अगर आपको मौका मिलता है सीखने के लिए तो आपको सीखना चाहिए.
Listen carefully.
लेकिन ध्यान सुनिए इस बात को.
Paulus,
Peter,
Petrus,
James, याकूब,
John,
यहोना.
They preached from a translation.
वे लोग अनुवाद करके प्रचार करते थे.
They used the translation.
उन लोग ने एक अनुवाद तो इब्रानी भाषा में नहीं, यूनानी भाषा से प्रचार करते थे वो लोग.
When they preached the Old Testament,
जब वो पुराने नियम का प्रचार करते थे,
they preached from a translation.
तो वो लोग एक अनुवाद से प्रचार कर रहे थे, इब्रानी भाषा से नहीं प्रचार कर रहे थे.
So you study your Hindi Bible.
तो आप भी अपने हिंदी बाइबल को अच्छी तरह से अध्ययन करिए.
You live in that Bible.
और आप उस बाइबल में जीवन व्यतीत करिए, उसको पढ़िए बार बार.
You be familiar with that Bible.
उससे आप अपनी अच्छी जान पहचान कर लीजिए.
So that when you read a passage like this,
ताकि जब आप एक इस तरह के खंड को पढ़ें,
somebody say, well, you ought to baptize your babies.
और कोई कहे आपको तो अपने बच्चों का बपतिस्मा करना चाहिए.
You and your children.
क्योंकि वहां पे लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए ये प्रतिज्ञा है. और फिर आपको उनको समझाना है कि भैया प्रतिज्ञा का मतलब यहाँ पे क्या है, सही तरीके समझाएंगे आप उनको. प्रतिज्ञा क्या है,
how was it received?
कैसे पाया जाता उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की बुलाहट क्या है,
how was it applied?
और कैसे लागू किया जाती परमेश्वर की बुलाहट. दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे, अगर आप इनको समझ जाएंगे आप
context,
तो उसके संदर्भ में
scripture interprets scripture,
और वचन ही वचन का व्याख्या करेगा.
help people understand the truth.
तो फिर आप लोगों को सहायता करने पाएंगे सत्य को जानने के लिए.
so an answer to your question.
तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर,
preachers need to learn to read.
प्रचारकों को पढ़ना सीखना जरूरी है.
so he can tell people this.
तो फिर आप उन लोगों से ये बोलेगा,
look at your Bible.
अपनी बाइबल में देखो.
Look at your Bible.
अपनी बाइबल में देखो.
And if you're a preacher,
जो प्रचारक है उसको ये करना जरूरी है. वो लोगों से क्या कहेगा, बाइबल में देखिए, अपनी बाइबल में देखिए, बाइबल में देखिए.
You must constantly tell people to look at their Bible.
और आपको अपने लोगों के सामने जब खड़े होकर प्रचार करते तो आपको अपने लोगों से बार बार कहना चाहिए, देखिए अपनी बाइबल में देखिए.
They cannot read.
और अगर वो लोग पढ़ नहीं सकते हैं,
you have a special responsibility to be as clear, plain and simple as possible.
अगर आपके लोग पढ़ नहीं सकते तो आपके पास ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको और स्पष्ट सरल सफाई के साथ उनको शिक्षा देनी है.
And you must explain abstract truths in an illustrative and concrete manner.
और तो आपको ऐसे सत्य जिनको छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता है, जो विचारधारा में है, उनको आपको लेकर उनके सामने ठोस रखना है और उनके सामने उनको उदाहरण के तौर पर बताना कैसे वो समझे उनको.
Most of you are not preaching to PhD people from Delhi.
आप में से अधिकांश लोग ऐसे लोगों से प्रचार नहीं कर रहे हैं जिनके पास डॉक्टरी की उपाधि है और दिल्ली में रहते हैं.
But it said of Jesus Christ, the common people heard him gladly.
और ये कहा जाता है कि यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो आम लोग बड़ी खुशी से उनको सुनते थे.
He spoke in a way that even a child could understand.
और जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो इस तरह से प्रचार करते थे कि एक छोटा बच्चा भी उनको समझ सकता था वो क्या कह रहे हैं.
And Paul preached in a way that constantly directed people to the word of God.
और पौलुस इस तरह से प्रचार करता था कि निरंतर लोग परमेश्वर की वचन की ओर देखते थे.
Any question?
कोई और प्रश्न है आपके सामने? कोई और प्रश्न है? भाई समझिए, उत्तर समझिए. तो उनसे जो लोग पर्दे नहीं प्रचार करते हैं उनसे क्या बचा कर रहे हैं आप? उनके लिए वो क्या बोलते हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा आप करवाइए. प्रौढ़ शिक्षा सरकार पीछे पड़ी हुई है, सबको सिखाओ. हर एक आदमी एक जन को सिखाएगा. कोई और प्रश्न? भैया आपका प्रश्न.
जो रुमाल के द्वारा तेल के द्वारा सेवा, ये वर्णनात्मक है, तो लोग उसको लागू करते हैं, क्या वो सही है या नहीं. और उसके साथ साथ जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कार्य करता हूँ तुम भी वो कार्य करो, वहां इससे भी बड़े हो जाते. क्या ये जो गौरव कर रहा है पतरस का परछाई से लोग चलने, क्या ये वो काम है या फिर दूसरा कुछ ऐसी बात है?
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. You talked about Acts being descriptive, most of Acts being descriptive, not prescriptive. People were the apostle would pray for the handkerchiefs and people would be healed. Is that descriptive or prescriptive? And then what about even the apostles, shadows, even the shadows would heal people. That, and then Jesus said that you would do greater things than I have done. Aren't these things greater things than Jesus?
The greatest thing is the new birth, of course.
सबसे बड़ा, सबसे महान आश्चर्यकर्म, सबसे बड़ा महान चीज तो नया जन्म है. पहली बात नया जन्म. दूसरी बात,
many people misuse those verses to trick people and deceive them.
और बहुत सारे लोग इन पदों को जहाँ पे रुमाल का वर्णन है, परछाई का वर्णन है, उसका इस्तेमाल करते हैं. हाँ जी, तेल पानी का इस्तेमाल करते लोगों को धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए.
Several times ago we talked about the question of miracles and healing, are they applicable for today?
बहुत समय पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था प्रश्न कि चंगाइयां और आश्चर्यकर्म क्या आज का हमारे पे लागू होते कि नहीं लागू होते हैं?
Does anyone remember that?
किसी को याद है हमने बात किया था चंगाइयों और आश्चर्यकर्म के बारे में?
Nobody remember.
सफा चट.
That's a very important subject in India.
ये आश्चर्यकर्म की बात हो रही है, चमत्कारों की बात हो रही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश में.
We've already answered that question, but perhaps we can review that again in the next several hours.
हम उत्तर दे चुके हैं इस प्रश्न का पहले, लेकिन हो सकता है हम फिर से उत्तर देने का प्रयास करेंगे अगले कुछ समय में.
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा.
What were the miracles the apostles performed?
कौन कौन से आश्चर्यकर्म थे जो प्रेरितों ने किए थे?
They raised the dead.
उन्होंने मरे हुओं को जिंदा किया. Yes.
Lame men walked, blind men saw, sick men were healed.
लंगड़े लोग चलने लगे, अंधे लोग देखने लगे, बीमार लोग ठीक हो गए.
Have you ever seen Benny Hinn do that?
क्या आपने कभी बेनी हिन को देखा ये करते हुए?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए बात को.
God can heal.
परमेश्वर चंगा कर सकता है.
He does heal.
वो चंगा करता भी है.
And he uses those miracles at times to lead people to Christ.
और अक्सर परमेश्वर इन चंगाइयों को इस्तेमाल करता है, इन आश्चर्यकर्मों को इस्तेमाल करता है लोगों को मसीह की ओर लाने के लिए.
Let me ask you a question.
लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता
हूँ. Everybody that was healed by Christ or by the apostles, is everybody actually saved?
जितने लोग प्रेरितों के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा चंगे हुए, क्या वो लोग बच गए?
Listen carefully.
Don't know, no guarantees, perhaps.
Physical healing is not spiritual salvation.
इस बात को ध्यान से समझ जाइए. शारीरिक चंगाई आत्मिक चंगाई नहीं है, उद्धार नहीं है. शारीरिक चंगाई आत्मिक उद्धार नहीं है.
Physical healing may lead to spiritual salvation.
शारीरिक चंगाई आत्मिक उद्धार की ओर लेके जा सकती है.
You understand what I'm saying?
मेरी बात समझ, हम क्या कह रहे हैं?
Acts chapter 8.
प्रेरितों का उसका 8वां अध्याय.
Went down to Samaria.
फिलिप सामरिया में गया.
He performed many miracles.
उसने वहाँ पे कई आश्चर्यकर्म किए.
People were amazed.
और लोग आश्चर्य से भर गए.
Were they saved by observing the miracles?
क्या फिलिपस के आश्चर्यकर्म को देख के लोग बच गए वहाँ पे?
No.
नहीं.
They were saved by hearing and believing the gospel.
लेकिन आश्चर्यकर्म को देखने से लोग बच नहीं गए, सुसमाचार पे सुनने के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा लोग बच गए.
And if you're going to minister in India, you need to develop a true biblical theology of miracles and healing.
अगर आपको भारत में सेवा करनी है तो आपको आश्चर्यकर्मों की और चंगाई का सही धर्म विज्ञान को समझना पड़ेगा.
Perhaps we can review that one more time before we leave.
और हम शायद जाने से पहले एक बार उसको पूरी बात करेंगे इसके बारे में, इस विषय पे.
Well, that's a very important subject.
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, बात करेंगे हम इसके बारे में.
Because there's a lot of false prophets, false teaching, and false healings today.
क्योंकि ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे चंगाइयां और झूठे आश्चर्यकर्म हो रहे हैं आजकल.
But interpreting the book of Acts demands great sensitivity.
अरे पर प्रे जो काम की पुस्तक का व्याख्या करने के लिए हमें बड़े ही संवेदनशील होने की जरूरत है.